अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर बोला जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां ना बैठो। चंद सेकंड गौर करें, हर वो महफिल जहां अल्लाह के दीन की हदें टूटे, जहां दीन की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां दीन सिर्फ एक खेल तमाशा हो, चाहे वो महफिल दीन के नाम पे सजे, चाहे दुनिया के नाम पे, चाहे रस्म के नाम पे, वहां बैठने की इजाजत नहीं है। कब तक? जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में मसरूफ ना हो जाएं, यानी जब वो गलत चीज छोड़े फिर उनके पास जाओ। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बीनी की तरह हो। आपको अभी तक के हिस्से में बिरादरी सिस्टम को सपोर्ट करना समझ आ रहा है? हम सिर्फ अपनों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करते हैं, असल में पीछे ख्वाहिश नफ्स होती है, खाने की मोहब्बत होती है। क्या करना ऐसे रिश्ते को बचा के जो रब का रिश्ता तोड़ दे? क्या करना ऐसे खाने को खाकर जिसके बाद आप उस रात इबादत ही ना कर सके? तो एक बात लिख लें, इस साल के तौरे कुरान से अगर आप ये जुमला सीख जाएं, हर वो मोहब्बत सर आंखों पे जो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे है, हर वो रिश्ता सर आंखों पे जो अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ाए, हर वो दावत, हर वो महफिल, हर वो कॉल जिसमें अल्लाह नाराज है, पहले से बता दे सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कम, मुझे सूट नहीं करता। देखिए इसको मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाती हूँ। पाकिस्तान में शॉपिंग करने के मुख्तलिफ तरीके मैंने देखे हैं। लोग रावी सेंटर में भी जाते हैं, लोग डॉलमन सेंटर में जाते हैं, बड़े बड़े कॉन्शियस नेम होते हैं, अब तो और भी बहुत सारे ब्रांड बन गए। इसी तरह कुछ लोग इतवार बाजार से भी शॉपिंग करते हैं। अब जो खाते पीते पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो कहते हैं हाँ मैं इतवार बाजार से शॉपिंग करूं, मुझे सूट नहीं करता। मेरी कोई दोस्त मुझे देख लेगी कि तुम इतवार बाजार में शॉपिंग कर रही थी तो मेरी बेइज्जती होगी। वो बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े बुटीक से कपड़े ले लेंगे, चाहे उनको उससे अच्छे बाहर सस्ते भी दिखे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है। आप इसको ले लीजिए अपने ऊपर, जिससे हमारे दुनिया के स्टैंडर्ड है, क्या दीन का हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं? मैं यहां बैठूं, मुझे ये सूट करता है? मैं इस महफिल में बैठूं? अस्तग़फिरुल्लाह, फरिश्ता आ गया तो क्या कहेगा? मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या करेगा? मैं सिर्फ रोटी के इंतजार में बैठी हूँ, खाना खुले फिर उसके बाद को चले हम घर चलते हैं, दो तो बजी के। ये इंसान को सूट नहीं करता, एक मोमिन की ये शान नहीं। अब सहाबे कराम की जिंदगी पढ़कर देखें, किसी से मरूब नहीं होते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, आपको पता है कि जब बैतुल मकदस के फातेह बनकर जा रहे थे, कितने साल बाद बैतुल मकदस फतह हुआ था? यूशे बिन नून के बाद, कई सदियों के बाद। और जिस्म पे कपड़े जो थे उसमें पैबंद लगे हुए थे, गुलाम ने मशवरा दिया कपड़े तो अच्छे पहन ले, इतने दुनिया के लोग आए हुए हैं बादशाह बड़े बड़े आपके इस्तकबाल में। कहा क्यों? जिन कपड़ों में अल्लाह के सामने जाता हूँ मैं उन्हीं कपड़ों में जाऊंगा। गुलाम ऊंट पे सवार है और उमर जो है वो बारी लेके नीचे पैदल चल रहे हैं। गुलाम ने कहा अल्लाह की पनाह मुझे नीचे आने दें, आप ऊपर आए, उनको क्या पता आप उमर हैं कि मैं उमर हूँ? कहा खबरदार तेरी बारी है, मैं क्यों ऊपर आऊँ? कल क्यामत के दिन वो मुझे बचाएंगे। और यही हुआ, जब हजरत उमर वहां दाखिल हुए लोगों ने समझा कि ये उमर है जो बैठे हैं और जो चला रहे हैं वो गुलाम होगा। ना तस्वीरें थी, ना कोई ट्विटर थे, ना कुछ था। ये वो किरदार थे जिसकी आज जरूरत है। आज मरूबियत बहुत है, छोटी सी बात पे नमाज चली जाती है हमारी, छोटी सी बात पे। मगरिबें तो हमारी कितनी फौत हुई शादियों ब्याहों और मंगनी और सालगिरों के फंक्शंस में, एंड नमाज से 10 मिनट पहले खाना खुलता है, चलो अब घर जाके पढ़ेंगे। तो याद रखिए, दुनिया में मुझे तो आज तक एक बंदा इस काबिल नहीं दिखा कि जिसको मैं खुश कर लूँ अपने रब को नाराज करके। सिर्फ एक ये काम आप कर लीजिए, बाकी रास्ते नेकियों के अल्लाह खुद आपकी ज़िंदगी में खोल देगा। अब आगे ज़रा सा गौर से सुनिए, मजबूत दिल के साथ सुनने वाली आयतें, जिसको कहते हैं कि कमज़ोर दिल के हजरात ये बात ना सुने। और वो क्या है? अल्लाह अकबर। وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يهودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كون ہوتے ہیں یہ؟ الذين يتربصون بكم. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आकर कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? यानी ये मुनाफिक कब दीन वालों का साथ देता है, जब दीन वालों को तरक्की मिलती है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, उनका साथ देने से कोई माले गनीमत मिलने की उम्मीद है, बैज ऑफ ऑनर मिल जाते हैं, कोई शील्ड्स मिलती हैं। नबी सल्लम के दौर के लोग मुंह देख रहे थे कि अच्छा अगर इस्लाम पनप गया, कामयाबी हुई तो हम मान जाएंगे, लेकिन अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो इनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर ना थे और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया, बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला कयामत के रोज करेगा। और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी। मुनाफिक कौन है? जो आखरत के फायदे भी लेना चाहता है लेकिन दुनिया के फायदे छोड़ना भी नहीं चाहता, जो अल्लाह को राजी भी करना चाहता है लेकिन दुनिया को नाराज नहीं कर सकता, ऐसे लोग चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की, जिसका पल्ला भारी हम उसके साथ। तो असल में तो मुनाफिक आप देखिए सबसे ज्यादा मुखलिस किसके साथ होता है? अपने साथ। फायदों का हरीस, लालची। अब जरा उनका अंजाम देखिए, याद कीजिए सूरत बकरा के शुरू में एक लिस्ट बनी थी, वमिनन नासी मैं यकूल आमन्ना बिल्लाही, वहां नाम लिए बगैर तकरीबन 13 सिफात जमा की थी हमने। अब यहां मुनाफिकों की कुछ और सिफात, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, वहां भी धोखा था, धोखे देता है, चालाक, होशियार, फ्लर्टी, चापलूस, डिप्लोमेटिक, चलो सबको खुश कर लेते हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इनको धोखे में डाल रखा है। और अगली सिफत नोट कीजिए, वैसा कामो इलस्सलाति कामो कुसाला, और जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कस मसाते हुए उठते हैं, महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। कुफर और ईमान के दरमियान डामाडोल हैं, न पूरे इस तरफ हैं और न पूरे उस तरफ, जिसे अल्लाह ने ही भटका दिया हो इसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। ये है इस बारे की आयत तदब्बुर। इस आयत पे जरा सा गौर करते हैं, बहुत कुछ खुलेगा हमारे ऊपर। आप देखिए कि यहाँ ये नहीं कहा कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि मुनाफिक नमाज तो पढ़ता है लेकिन सुस्ती का मारा पढ़ता है और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है। जरा सा सोचिए वो लोग फिर किस कैटेगरी में आते हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं है। सोचने की बात है, नमाज के पीछे पड़ जाए, आपको मुझे अपनी नमाज की फिक्र लग जाए, ये हमारी नेकी की तरफ आने का पहला कदम होता है। फिर आप देखिए युराउनन नास, लोगों को दिखाते हैं, लोगों में बीच में होते हैं तो बड़ी अच्छी नमाज़ें, खूब लंबी नमाज़ें, वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, नमाज में अल्लाह का जिक्र ही कोई नहीं, अल्लाह की याद ही कोई नहीं, नमाज को सिर्फ कुल हो अल्लाह पे डाला हुआ है, नमाज को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 3 दफा पढ़ के खत्म, सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह, ये कौन सी नमाज पढ़ी आपने? देखिए मैं आपसे बात करती हूँ और मैं तेज तेज बोलती जाऊँ और आपके पल्ले कुछ ना पढ़े, क्या मेरी बात से आपको मजा आएगा? हम जो नमाजें पढ़ते हैं क्या वाकई वो नमाज इस काबिल है कि अल्लाह को पेश की जाए? और आप देखिए मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका तज़ब्ज़ुब ला इलाहा हौला ला इलाहा हौला, क्या 2 कश्तियों का सवार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो 2 रेवड़ों के बीच में जुफ्ती की उम्मीद पर इधर उधर फिरती रहती है। मुनाफिक हर वक्त परेशान, डिस्टर्ब पर्सनैलिटी, दुनिया वालों की तरफ जाता है वो उसको कबूल नहीं करते, दीन वालों के पास जाता है दीन वाले कहते हैं कि अच्छा जी आ गया बाप इधर, वो भी नहीं एक्सेप्ट करते, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता है और उसके बाद दूसरे काम भी कर लेता है, परेशान, स्प्लिट पर्सनैलिटी। आप सोचिए डामाडोल शख्सियत कैसी होती है, कभी आपको किसी भी चीज का फैसला करना और आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे, तकलीफ का वक्त नहीं होता, परेशानी का वक्त होता है, तो मुनाफिक परेशान इंसान होता है, आस्तीन का सांप होता है, दोस्त के रूप में दुश्मन होता है। वो इस किस्म का होता है कि जो अपने आप को हर जगह कबूल करवाना चाहता है, वो कहता है कि बस मैं खुश रखूं सबको, लेकिन सबको खुश रखने वाले से कोई भी खुश नहीं होते। ये चीज़ आपके मेरे लिए बहुत बड़ा नुक्ता है यहाँ सोच का, और वो क्या है कि अपनी ज़िंदगी में यक रुखा पर लाना है इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखिए अगर शीट खुली है तो इसको साथ ही देख लीजिए, क्या इस हिस्से की जो हदीस है वो कौन सी है, बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खाफ अदलजा व मन अदलजा बलगल मंजिला अला इन सिलतल्लाहिल गालिया अला इन सिलतल्लाहिल जन्ना, ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور قیمتی ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ حدیث کیوں چوز کی گئی؟ کیونکہ اس پارے کی ٹائم مینجمنٹ ٹپ جو تھی نیچے آپ دیکھیے وہ کیا تھی، سستی کو دور کرنا. ہمارا آج کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہو گیا اور وہ کیا ہے کہ ہم نمازوں کو قضا کرتے ہیں. تو آج کی اس ٹپ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، نماز اذان کے فوراً بعد ادا کریں. کوشش کی آپ نے اس پہ؟ آج اور بھی کریں گے. جو ہی اذان ہو جائے آپ سوچ لیں کہ آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کو مجھے گھر میں بیٹھے میں سے کوئی بلائے تو کیا ہم آدھے گھنٹے بعد جواب دیں گے؟ فوراً جواب دینا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو ہے وقت ضائع کرنے والی، ٹائم ویسٹر کیا تھا؟ سستی اور کاہلی، کیونکہ یہ وقت کے دو دشمن ہیں. اس میں ہم نے آیت 72 میں پڑھا تھا ایک شخص جس کا کردار کیا تھا، لَيُبَتِّيَنَّ. تو بتی کہتے ہیں سست کو. اب واپس آ جائیے آج کی اسٹپ پہ، اور وہ کیا ہے، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نیکیوں کا سفر جلدی شروع کر دو. صبح کا وقت زندگی کا کامیابیوں کا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو نیکیوں کے کام جلدی شروع کرتا ہے، بعض لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع میں نکلتا ہے وہ عافیت میں. کیا مراد؟ کوئی بھی سفر ہو، آپ دیکھیے کہ ایون آپ نے کہیں لانگ ڈرائیو پہ جانا ہو نا، آپ مڈ نائٹ کے بعد نکل جائیں نا تو آپ کا سفر طے جلدی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کو زمین سکڑ جاتی ہے، فاصلہ طے ہوتا ہے، ویسے بھی رستے خالی ہوتے ہیں. بالکل زندگی کی شاہراہ پہ بھی یہی کام ہے. آپ میں سے کوئی 16-17 سال کی ہوں گی سسٹرز، اور کوئی 60-70 کے بھی ہو سکتے ہیں. جو جتنی جلدی نیکیوں کا سفر شروع کرے گا اس کی برکت زندگی میں محسوس کرے گا. سب سے پہلی بات ہے بوڑھے نہیں ہوں گے. نیکی کا ایک اتنا بڑا اثر یہ کہ آپ کا وقت وہیں رک جاتا ہے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا. آہستہ آہستہ رینگتا ہے، 4 سال میں آپ کا 1 سال کور ہوتا ہے، 3 سال بعد آپ 1 سال آگے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی آپ اس عمر میں نیکیاں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے سفر جلدی شروع کر دیا تھا. تو زندگی سے سستی نکالنی ہے. یہ جنت بڑی قیمتی ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی نمازوں سے ہمیں جنت ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے. ہر ایک اپنے اوپر لے کر سوچے تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ میں جنت کی خریدار ہوں اور نیکیوں کی کتنی ریزگاری میرے ہاتھ میں. پھر اسی طرح سے آج کی دعا کیا ہے، سورۃ آل عمران آیت 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. آپ میں سے جو لوگ ماشاءاللہ صبح جلدی آتے ہیں، اور 90% لوگ جلدی آ چکے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں دعائیں یاد کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ روز کی شیٹ کی دعا کو گھر جا کے 10-10 بار دہرا لیا کریں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پورے سفر میں آپ پورے قرآن کی دعائیں یاد کر چکے ہوں گے. کتنی بگ اچیومنٹ ہے. تو یہ جو شیٹ پہ دعائیں آ رہی ہیں یہ ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں، اور فائنلی قریب بک جو آپ کے ہاتھوں میں اس کو اس کے ساتھ ملا لیجئے، آپ کے ایک ساتھ چلیں گی یہ دعائیں انشاءاللہ. چھوٹی تھی دعا اس لیے ایک اور ڈال دی گئی، آیت 147 آل عمران، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافروں پر غالب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دعائیں جو اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جس میں ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی مدد بھی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری بھی. اور قابل تقلید شخصیت ہم دیکھ ہی چکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. اب واپس آ جائیے پارے کی آخری آیتوں پہ، کس طریقے سے ایک منافق کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا. کرو کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ کس بات کی کہ اللہ تمہیں پکڑ لے؟ یعنی جب کوئی مسلمان کفر والے رویے، کفر والے طریقے اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ میری پکڑ کر لیجئے. یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. سب سے نیچے کیوں؟ وہ سب سے گہرا ہے. کبھی تنور میں روٹی پکوائی ہو، اوپر اوپر آگ کم ہوتی ہے، نیچے جہاں لکڑیاں جلتی ہیں نا وہاں نیچے سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو جہنم کے بھی 7-8 درک ہیں، مختلف سٹیجز ہیں. سب سے نیچے والا سب سے گرم ہے، اور آپ کو پتہ اس کا نام کیا ہے؟ ہاویہ. اور ہاویہ کا لفظ ہوا سے ہے. ہوا کہتے ہیں خواہش کو، لسٹ، ڈیزائرز. उस दर्जे में, उस नीचे वाले टेम्परेचर में अल्लाह मुनाफिकों को डालेगा। हम तो सोचते हैं काफिरों को डलना चाहिए, नहीं, काफिरों ने कोई दावा नहीं किया, उनका मामला अल्लाह के साथ। हमें फिक्र अपनी लगनी चाहिए, कहीं इस्लाम के साथ, ईमान के साथ निफाक का कोई रवैया तो नहीं। देखिए बड़ी सख्त चीज़ है, थोड़ी चीज़ नहीं, इसलिए इस पे नरम बात हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला कहते हैं सबसे नीचे, और सबसे नीचे वाले को बाकी सारे मराहल तय करके नीचे पहुंचना है ना, तो इसीलिए कहते वाला हम अजाबुन अलीम, मुनाफिक को दर्दनाक अजाब मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर की लस्फली मिनन्नार वलन तजीद लहुम नसीरा, और तुम उनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। दुनिया में मदद करते, आज दुनिया में हम अपने और दूसरों के निफाक को खत्म कर लें, बहुत आसान हो जाएगा। वहां जाके सिफारिश नहीं चलेगी कि अच्छा अब ये मेरा दोस्त, ये मेरी बहन, ये मेरा रिश्तेदार, आप इनको बचा लीजिए। अब ये बातें सुन के एकदम परेशान हो गए, हुए ना कि नहीं, फिक्र तो लगती। तो अब आखिरी आयतों में निफाक से अपग्रेड होने के तीन मराहल हैं, पता लग गया। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी बुराई पता लग जाए, बीमारी पता लग जाए, चले उसके बाद इलाज कराना क्या मुश्किल है। तो अब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आयत है, इल्लल्लज़ीना ताबू वसलहू वातसमू बिल्लाहि वखलसू दीनहुम लिल्लाह फौलाइक मअल मोमिनीन वसौफ युतिल्लाहुल मोमिनीन अजरन अजीमा। अलबत्ता इनमें से जो तायब हो जाए, यहां बैठे बैठे तौबा करें, हम सब अल्लाह हम अपने सब गुनाह जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते उससे तौबा करते हैं, और तौबा शर्मिंदगी का नाम है। शर्म से पानी पानी हो जाए बंदा अपने किसी अमल को देकर, अल्लाह मुझे शर्म नहीं आती, मैंने ये क्या किया, अल्लाह उस दिन मैंने ये पहना, उस दिन मैंने ये बोला, उस दिन मैंने ये कहा, अल्लाह मैं ऐसी थी, ए अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। दूसरी सूरत, और अपने तर्ज़ अमल की इसलाह कर ले, यानी जिस चीज़ पे आज शर्मिंदा हुए हैं अब दोबारा कभी इसका मौका ना आए, दोबारा आई विल नॉट डू दिस, ये तौबा की दूसरी शर्त है कि उस काम को अब दोबारा नहीं करना। और तीसरी सबसे जरूरी और खूबसूरत चीज, वातसमू बिल्लाह, और अल्लाह का दामन थाम ले। अल्लाह का दामन कैसे थमता है, अल्लाह हमारे पास तो नहीं है। वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की इस रस्सी को थाम ले। याद रखिए इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में और दूसरा आपके हाथ में आ रहा है, इसको पकड़ लें, और उसके बाद फिर जो लामुहल्ला काम खुद बखुद होगा, वखलसु दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। ये हैं चार मरहले, आमनु, ताबू, असलहु और वातसमु बिल्लाह और अखलसु दीनहुम। बिल्कुल प्योर, क्लीन, क्लियर होकर निकलेंगे। फरमाया जब तुम खालिस हो जाओगे, फौलाइकम अल मोमिनीन, फिर अल्लाह ऐसे ही मोमिनों के साथ है। बाकी ज्यादा उम्मीदें ना रखे अल्लाह से, अल्लाह हमें ईमान दे दे, अल्लाह निफाक से बचा ले। बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, वो सब शौर से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा तख़्खिर कुलूबना मिनन निफाक, अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से पाक कर दे। वामालना मिनर रिया, और हमारे अमाल को रियाकारी से बचा दे। वलिसानना मिनल कज़िब, और हमारी जुबानों को झूठ से बचा दे, और हमारी आंखों को खियानतों से बचा दे। मांगा करें, मत खुद को निफाक फ्री समझे, निफाक से खुद को पाक सिर्फ मुनाफिक समझता है। तो हमेशा अपने लिए वो रास्ता चूज कीजिए जिसमें मजीद इसलाह हो जाए। और आखिरी आयत देखिए कितना प्यार है इस एक आयत में, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ख्वामखा सजा दे, तुम्हें हाविया में गिराए, तुम्हें दर के असफल में गिराए। कभी कोई माँ अपने बच्चे को आग में डालती है तो अल्लाह को क्या पड़ी है, वो तो नहीं ऐसा, वो तो है ही रहमान, वो तो है ही रहीम, वो तो है अल वदूद अल करीम, वो तो बड़ा कदरदान है, वो नहीं चाहता। पर शर्त है, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। पहले शुक्र है फिर ईमान है, क्योंकि शुक्र के जज्बों से तो ईमान फूटता है। पहले शुक्र आता है, कदरदानी है, मेरे रब ने मुझे इतना दिया, मेरे रब ने मुझे इतना दिया, ये किया वो किया। जब ये सब कुछ सामने आता है उसके बाद फिर एक इंसान अपने आप को अल्लाह की नज़र से देखने लगता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस पूरे बारे में हमने जो कुछ पढ़ा, जो सुना, जो नियतें की, अल्लाह उसको कबूल करे, हमें उन नियतों पर इरादों पर कायम रखे, और अल्लाह ताला हमें निफाक के अगर किसी भी लेवल पे हम मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आगे लेकर जाए, और बिल्कुल अल्लाह सुबहाना ताला हमें ऐसा बना ले कि क्यामत के दिन जब हमें देखे तो उसको हम पे प्यार आने लगे। शऊर के साथ दुआ मांगिए अपने लिए, चंद सेकंड की खामोशी के साथ।